યોગાસ્ત્રયો મેરા પ્રવતા નૃણાક્ષયો વિદિત્સયા. ભાગવત માં આયા હૈ ભગવાન કે મને તીન યોગ પેદા કિયે હૈ લોકો કે ઉદ્ધાર કે લિયે. વો તીનો યોગ હમ સંપૂર્ણ લોગ ધાર કર સકતે, મનુષ્ય માત્ર જાન કર સકતા હૈ. વો ક્યા હૈ? જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ ઓર ભક્તિ યોગ. જ્ઞાન યોગ ક્યા હૈ? કે હમ શરીર નહીં હૈ, યે નાશ ઉત્પન્ન નષ્ટ હોને વાલે હમ નહીં હૈ. મેં શરીર નહીં હું, અર્થાત અરુણ બ્રહ્માંડ હૈ વો મેં નહીં હું, મેરા નહીં હૈ. યે જ્ઞાન યોગ હૈ. ઓર કર્મ યોગ ક્યા હૈ? કે જો શરીર આદિ સામગ્રી સૌ સંસાર કી હૈ, મેરી નહીં હૈ, યે કર્મ યોગ હૈ. ઓર ભક્તિ યોગ ક્યા હૈ? કે સંસાર સબ હમ કેવળ પરમાત્મા કે હૈ, માલિક પરમાત્મા હૈ. તો માલિક તો એ પરમાત્મા, યે ભક્તિ યોગ હો ગયા. ઓર ઇસકા કારણ હૈ પ્રકૃતિ, યે જ્ઞાન યોગ હો ગયા. ઓર યે સંસાર હૈ, યે કર્મયોગ હો ગયા. માનો જ્ઞાન યોગ કે દ્વારા ક્યા હોતા હૈ? કે અનંત બ્રહ્માંડ કુછ ભી હો, મેરા નહીં હૈ, મેરે લિયે નહીં હૈ, મેં નહીં હું, મેં શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ ઘન હું. તો સત્ય શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ ઘન હું, યે હૈ વિધિ. તો વિધિ બાકી યહાં નહીં ચલતા હૈ. વિધિ વાક્ય સે જલ્દી સ્થિતિ નહીં હોતી હૈ, નિષેધ વાક્ય સે જલ્દી સ્થિતિ હોતી હૈ. અપને સ્વરૂપ કી સ્થિતિ સ્વરૂપ કે ચિંતન સે જલ્દી નહીં હોતી. ક્યું નહીં હોતી? કે સ્વરૂપ કા ચિંતન કરોગે તો સાથ મેં મન ચિત્ર સાથ મેં રહેગા, જડતા સાથ મેં રહેગી. અબ ધારણા કરોગે, ચિંતન કરોગે, ઉદ્યોગ કરોગે તો સાથ મેં જડતા રહેગી હે. ઓર મેં હોઈ નહીં હૈ તો નિષેધ હાથ મેં હોને સે વો સ્વરૂપ સ્થિતિ સ્વતઃ હૈ આપની. સંસાર જો માના હૈ યહી તો ગલતી હોઈ હૈ. તો સ્વતઃ સિદ્ધ અપની સ્થિતિ અપને સ્વરૂપ મેં આપ સાફ હો ગઈ નિષેધ કરને સે. તો ક્યા હૈ મુખ્ય બાત? ક્યા હૈ જ્ઞાન યોગ મેં? કે મેં શરીર નહીં હું, ના સ્થૂળ શરીર હું, ના સૂક્ષ્મ શરીર હું, ના કારણ શરીર હું. इनसे अलग अपना अनुभव करना है, ये ज्ञान योग है. ये सब क्या है? ये प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का. ये सब ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है. ये अनुभव कर देना अपना आप ज्ञान योग हो गया. और कर्मयोग क्या हो गया? कर्मयोग ये हो गया, ये सब मैं नहीं हूं, किसी देह के संसार के लिए है. तो गया कर्मयोग सत्य सिद्ध हो जाएगा स्वाभाविक. शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं. तो शरीर संसार का है, संसार लिए है. संसार का है, संसार के लिए है. तो शरीर संसार के लिए हो तो मेरे पास जो सामग्री है, जो कुछ ही, वो सब संसार की है, संसार के लिए ही है. संसार की सेवा ही खुली है इसमें. तो कर्मयोग हो गया. और भक्तियों क्या है? कि भाई संसार में सब कुछ भगवान का ही है. तो देखो संसार मालिक तो है परमात्मा, और धातु है प्रकृति, और कार्य है संसार. ये सब एक ही चीज है, ये एक ही चीज है. ये तीनों योग होने से पूर्णता हो जाती, फिर बाकी कुछ नहीं रहता. कर्मयोग भी पूरा हो गया, ज्ञान योग भी पूरा हो गया, भक्तियों भी पूरा हो गया. सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं रहा. जब हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, हमारे लिए संसार नहीं, संसार के लिए हम हैं. ये कर्मयोग है, संसार के लिए हम हैं, हमारे लिए संसार नहीं है, कर्मयोग है ये. और हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान योग हो गया. हम संसार के लिए, संसार हमारे लिए है, कर्मयोग हो गया. तो कर्मयोग ही होता है वो किस लिए? कर्मयोग संसार के काम आ जाता है, और ज्ञान योग अपने काम आ जाता है. अपने आप निर्लोप हो जाएगा, मेरे साथ कोई संबंध नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का संबंध मेरा रुकेगा ही नहीं, ये सब परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। तो मैं अपरिवर्तनशील हूँ, एक तो स्थिति विध्यात्मक है, और मैं शरीर नहीं हूँ, परिवर्तनशील नहीं हूँ, ये निषेधात्मक है। निषेधात्मक तो मैं मन बुद्धि निषेध के साथ चली गई, हमारे साथ नहीं रही, और विध्यात्मक में मन बुद्धि साथ रहेगी, तो मैं नहीं हूँ। तो ये संसार का काम आ गया, संसारी काम संसारी, तो संसार भी उपयोग हो गया, और ये जब सब जब गया तो अपने भी उपयोग हो गया, और मैं भगवान का हूँ तो भगवान के लिए उपयोग हो गया। मनुष्य शरीर ऐसा है, उसकी चाहना संसार को भी है, भगवान को भी है, अपने को भी है। अपने काम सिद्ध है, संसार काम सिद्ध है, भगवान में सिद्ध हो गया, मालिक भगवान है। ये तीनों तीन नहीं है, एक ही है, परमात्मा ही जीव है, परमात्मा ही संसार है। क्यों? उसको अपरा परा प्रकृति माना, संसार है अपरा प्रकृति, जीव है परा प्रकृति, और परा प्रकृति वाले है भगवान। भूमिरा पुनर वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरा यु, ये मैं प्रकृति मेरी, मैं भी असुरा अपरा यूतम प्रकृति मेरी, मैं परा मेरी, तो अपरा भी भगवान की मेरी है, परा भी भगवान की मेरी है, भगवान है, तो एक ही हुए भगवान, ये एक हो गए। एक योगी निगुरता सर्वाणी, ये अपरा परा प्रकृति से सब पैदा होते हैं। यावत संजाते किसी सत्तो सावत एवं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र के संयोग से पैदा होते हैं। तो क्षेत्र 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 तो अपरा प्रकृति, क्षेत्र की परा प्रकृति भगवान मालिक, जिसके संयोग से हुए। यावत संजाते कि स्थावर जंगम जो जाए, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र शरीर और क्षेत्र को जाने वाले क्षेत्र की। यावत संजाय थे कि सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के, एतद्योनि भूतानि सर्वाणि तो बधाई अहं कृष्ण से जगत, और मैं सबका, क्योंकि मेरी प्रकृति अपरा मेरी परि है, इस संसार हुआ तो मैं ही तो सुबह कारण हुआ कि आपके अगर ही मत पर तुम जाने परापरि प्रकृति हुई और सबका मैं हुआ, मैं प्रभु और प्रलय हुआ। प्रभु और प्रलय करने का मतलब उत्पन्न वस्तु होती है उसका उपादान कारण होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा किया जाए तो मिट्टी उपादान कारण है, जो स्वयं होती हुई कार्य में परिणति उपादान कारण होता है, और उसमें मिट्टी को घड़े में परिवर्तन करने वाला होता है वो निमित्त कारण होता है, ये कुम्हार निमित्त कारण है। तो भगवान उपादान कारण भी भगवान ही, क्योंकि मेरी तो है संसार सब मेरे ही है और मेरे से उत्पन्न होते हैं, तो उसका हम कृष्ण जगता प्रभव प्रलय। प्रभव जो है ना ये तो निमित्त कारण, और प्रलय क्या है उपादान कारण। घड़ा अंत में मिट्टी में ही जाता है, मिट्टी से होता है अंत में, तो प्रलय का मतलब है उपादान कारण, और प्रभु का मतलब है निमित्त कारण। तो उपादान निमित्त कारण मैं ही हूँ, तो मैं ही तो घड़े रूप से प्रकट होता हूँ, मैं ही प्रकट करता हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगणो, सब संसार मेरे में पूरा, जैसे सूत के मणिया सूत के धागे में पूरा हुआ होता है, तो सूत के धागे बोया हुआ सूत भी धागा भी सूत है, मणिया भी सूत है, ये सूत ही सूत ऐसे वासुदेव सर्वम, सब कुछ मेरे में ही है। धीरे में पूरा संसार है मेरे में, और मैं हूँ सब में। तो इसी उपासना करना, चाहे सब में भगवान को मान लो, चाहे सबको भगवान में मान लो, सब में भगवान को मानो, सब भगवान सबको मानो, चाहे सबको भगवान मानो, सब से भगवान के मानो, ये चारों बात बन जाएगी। सब में भगवान है ये बैठ जाएगी, और सभी भगवान में है बैठ जाएगी, और सभी भगवान है ये बैठ जाएगी, और सभी भगवान के है बैठ जाएगी। सर्वतम किसी में शंका नहीं रहेगी, तुम भगवान ही जब बने हुए संसार रूप में तो मालिक भगवान ही हुए सबके, परा प्रकृति है तो भगवान का संसार है, सब में भगवान है, अगर सूत सब में सूत है, भगवान ही भगवान सब में है, और सब सब भगवान में है, ये सभी भगवान है, ये सभी भगवान के हैं। इन चारों में से कोई एक भी उपासना ठीक करेगा तो ठीक है, सब उपासना अनुभव जाएगा। सब में भगवान है, यहाँ देखो सब भगवान है, भगवान है, भगवान देखते ही सब में अपने सब में भगवान हो जाएगा, सब में भगवान, और सब भगवान यही अंतर्गत है, सभी सभी सेवा करे सभी, और भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, सब का मालिक भगवान ही है। अपरा परा प्रकृता में गतन में अपरा में परा भी, इन चारों चीजों से किसी को एक को लेकर दृढ़ धारण करो, सब पूरा हो जाएगा, और सब कुछ भाष दी हुई है, भाष नहीं करो, ठीक समझ में जाएगी बात। क्यों है परमात्मा ही, परमात्मा से गई दूसरी सत्ता कोई हुई नहीं, कोई दूसरी सत्ता है नहीं, कोई दूसरी सत्ता होगी नहीं, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत इसमें आ जाएगा, द्वैत सिद्धांत इसमें आ जाएगा, पिष्ट द्वैत भी आ जाएगा, शुद्धाद्वैत भी आ जाएगा, अरविंद भेद भेद भी आ जाएगा, कोई सिद्धांत बात नहीं रहेगा, तो एक विलक्षण बात आवेगी। वो क्या विलक्षण होगी कि मतभेद नहीं रहेगा, नहीं तो अद्वैत और द्वैत में मतभेद रहता है, एक अद्वैत मानता है एक द्वैत मानता है, तो एक ऐसे विरुद्ध पड़ता है तो मतभेद रहता है, तो मुक्त हो जाते हैं, पर मुक्त होने पर भी एकता नहीं होती, वो एकता हो जाएगी स्वरूप के साथ एकता हो जाएगी, परंतु मतभेद में मतभेद रहेगा। वो मतभेद क्या करेगा, जो वास्तव में अद्वैत और द्वैत का अनुभव कर लिया उनमें कुछ भेद नहीं रहेगा, परंतु उन अनुयायियों में भेद रहेगा। तू एक अद्वैत मानता है, द्वैत मानता है, उपासना करता है, तो उसमें आत्म खसक रहेगी, तो वास्तविक समय खटपट नहीं रहेगी। ऐसे विशिष्टाद्वैत अद्वैत है उसमें फर्क रहेगा, तो वहां पर खट रहेगी, शुद्धाद्वैत होगा उसे फर्क रहेगी, अचिंत भेदाभेद तो खटपट रहेगी। वास्तविक स्वरूप में सब आ गया, अद्वैत भी इसमें आ गया, द्वैत भी आ गया, विशिष्टाद्वैत भी आ गया, शुद्धाद्वैत भी आ गया, और चैतन्य महापुरु होगा द्वैताद्वैत होगा, इसी अंतर्गत आ गया। वास्तविक स्वरूप एक वास्तविक परमात्मा ही परमात्मा है, तो इसमें कोई मतभेद नहीं रहेगा, और सबका प्रेम होगा, इसमें अनुयायियों में भी भेद नहीं रहेगा, तो वास्तविक मानते हैं अनुयायी भी, तो भेद कैसे रहेगा। मानो साधकों में भी नहीं रहता, सिद्ध में तो रहता ही नहीं, सिद्ध तो किसी तरह से हो जाएंगे, तो उसमें तो भेद नहीं रहेगा, उनमें प्रेम का भेद भी नहीं रहेगा, परंतु भीतर में सिद्धांत एक एक मानता है वो रहेगी। सिद्धांत के पकड़ने से बहुत सूक्ष्म संस्कार अहंकार रहेगा, और वो मत का अपने मत की वह चल जाएगी, तो मतवादी मानना नहीं तत्वादी की बात, वो मान ही सकता, मतवादी होते हैं तत्वादी, तत्वादी क्या वास्तव सर्व, मतवादी क्या अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, ये मतवादी, और तत्वादी क्या परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। उसमें एक गलती बड़ी होती है कि हम किसी मत को देखते हैं तो हम अपने मत वाले होते तो अपने को अलग रख देता है। अद्वैत सिद्धांत है कि परमात्मा भी इदंता से है, जीव भी इदंता से है, प्रकृति भी इदंता से है, ब्रह्म भी इदंता से है, जगत भी इदंता से है, मैं जानने वाला अलग, तो सब में ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान का विषय हो तो ब्रह्म कहने की बात है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता, ईश्वर ज्ञान का विषय नहीं होता, संसार ज्ञान का विषय हो सकता है, आपके ज्ञान का विषय नहीं है स्वयं, परंतु अध्ययन करते समय ब्रह्म के ज्ञान का विषय होगा, माया भी ज्ञान का विषय होगी, ज्ञान भी ज्ञान का विषय होगा, तो वो वास्तविक स्थिति नहीं होगी, वो अपने आप उसी में एक परमात्मा ही है, तो विषय 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 विषय, मानो जानने वाला और जानना और जानने में आने वाला तीनों एक ही हो जाएंगे, जब तक मत भेद तब तक तीन रहेंगे, जानने वाला और जानना जानने में आने वाला, जानने में आने वाला अद्वैत है द्वैत है विषय, ये जानने में आने वाली चीज है, जानने वाला जो इसका अनुयायी है अध्यागत जानने वाला होता है, उसको जानना ये चुपकी होती है, और वास्तविक स्वरूप में न जानने वाला रहा, न जानना रहा, न जानने में आने वाला रहा। ये वास्तविक सिद्धांत है। तो गीता का ये इतना व्यापक सिद्धांत है, सब इसके अंदर बताए जाते हैं। जब सत्ता ही एक हो गई तो दूसरा क्या होगा? एक के अंदर सब सब बताएंगे, सब पूर्ण के पूर्ण एकदम एकदम पूर्ण, कहीं से तुम्हारे भी कहीं भेद नहीं। अरे प्रेम होगा तो मैंने पुस्तक पढ़ा है कि हम सब सह सकते हैं, मन प्रेम न हो वो नहीं सह सकते। प्रेम का भेद नहीं सहते थे। प्रेम नहीं होने से क्या होता है कि ज्ञान होने से बोध हो जाता है, पर प्रेम न होने से एक अपने मत में राग होता है, और अपने मत में राग होता है दूसरे से द्वेष पैदा हो जाएगा, और जहां द्वेष पैदा हो जाता है वहां तत्व की खोज नहीं होती, वो खोज बाधा हो जाती है, तो तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बाधा हो जाती है। तो प्रेम बड़ा आवश्यक चीज है। जैसे एक स्थूल दृष्टांत दिया जाए कि रुपया बड़ी बढ़िया चीज है, धन बड़ी बढ़िया चीज है, परंतु बढ़िया चीज है और रुपया बढ़िया किसको अच्छा लगता है? लोभी को बढ़िया लगता है। तो लोभी ना हो, लोभ किंचित मालूम रुपया क्या चीज है, लोभ ना हो तो रुपये को कीमत है। ऐसे धन है ज्ञान, लोभ है प्रेम, प्रेम है उसका आकर्षण प्रेम। तो प्रेम से ही ज्ञान का और सबका विशेषता है, नहीं तो मतभेद आपस में और लड़ाई हो जाएगी, खटपट हो जाएगी। जो प्रेम से न होगा तो आकर्षण होगा एक तत्व में, तो सबका आकर्षण एक जगह हो जाएगा, वो आत्मीय सर्व। तो उसमें तत्व खोज है वो बड़ी सुविधा से हो जाएगी, तत्व प्राप्त होने सुगम है। तत्व की प्राप्ति है ये खोज है, एक उत्पत्ति होती है एक खोज होती है। उत्पत्ति होती है वो तो अपूर्ण होती है, पहले नहीं थी पीछे पैदा होगी, और खोज वो है जो अनादिकाल से है, उसका आविष्कार होता है। जैसे बिजली से आविष्कार हुआ तो आविष्कार पर तत्व तो है और वो खोज दे बोलते निकाल दिया भीतर से, तो खोज होती है वो असल तत्व मिलता है, और बनावटी होती है वो अलग होता है। तो ये जितने मत है, हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, यहूदी है, ये है पारसी है, ये है, ये मान्यता है, परिकल्पना है, इसमें भेद होगा। खोज करो तो एक ही निकलेगा जीवन से, जहां विशेष मनुष्य आदि में होता है उसी के, तो वो एक मत होता है। खोज से वृद्ध होती वो सिद्धांत होता है। तो ये मतवादी होकर के फिर मतवादी में खटपट हो जाती है आपस में, क्यों एक एक से प्रेम नहीं होता, और सबसे प्रेम होता है अपने, तो दूर हो कैसे, अपने आप से दूर कैसे होगा। तो गीता जी का इतना व्यापक सिद्धांत है कि किसी के साथ में भेद हो ही नहीं सकता। कहते वो भेद करे तो वो भेद करे तो वो भेद करने वाला भी कोई गया विशिष्टा भेद वाला समझ लो, सातवें आसमान वाला समझो भेद करे तो भेद करने वाले वो भी वो भेद करने वाला प्रेम नहीं करे, पर हम प्रेम से देखें तो क्या उसकी ताकत है मेरे हद हो जाए। मैं हृदय से उनका भला चाहूँ, हृदय से उनका उपकार चाहूँ, सेवा चाहूँ, तो क्या ताकत है वो हमसे हो जाए। हम तो एक हो जाएंगे, वो हमारे दूर हो नहीं, वो सकते ही ताकत नहीं। हम प्रेम करें वो हमारे कुछ भी नहीं माने कैसे होगा, दम मानो बेशक, पर कितना दिन कब तक। तो प्रेम में ऐसी विलक्षण ताकत है, बस एक हो जाते सभी। ज्ञान और प्रेम दो विलक्षण है, ये स्वयं अपनी चीज है। प्रेम में भी अपने आप को होता है, ज्ञान भी अपने आप को होता है। अपने आप में जो आकर्षण है वो सबसे बढ़िया है, और जो दूसरे में आकर्षण दूसरे में पदार्थ में पदार्थ वो बढ़िया नहीं है, वो दूसरे दूसरा मानते ही आसक्ति हो जाएगी। जैसे धन में आसक्ति है तो लोभ हो जाएगा, जैसे सुख में आसक्ति है काम हो जाएगा, लोभ काम है बाधा लेने क्रोध आ जाएगा, और उनकी वृद्धि के लिए संग्रह हो जाएगा तो दो में आशा तृष्णा हो जाएगी, अनेक दोष आ जाएंगे। ऐसा प्रेम ही प्रेम है सब जगह, उसी आनंद ही आनंद है, जो कोई है ही नहीं। जब कोई हो तो द्वेष करे, राग द्वेष होगा तो द्वेष दूसरे होने से वो अपना राग हो तो राग ही तो नहीं रहेगा। जब दूसरी सत्ता नहीं रहेगी तो अपना प्रेम रूप होगा, राग रूप नहीं होगा। प्रेम ही राग का रूप धारण करता है। जब पात्र असत होता है, नाशवान होता है, उसके विषय में कहते हैं तो राग हो जाता है, और पात्र जब परमात्मा होते हैं तो प्रेम हो जाता है। है तो आकर्षण वही, वही काम हो जाता है, वही राग हो जाता है, वही आसक्ति हो जाती है, वही कामना हो जाती है, वही आशा हो जाती है, वही तृष्णा हो जाती है, वही यातना हो जाती है, भावना हो जाती है। ये मात्रा अलग अलग हो जाती, मूल चीज एक ही है। अगर वो परमात्मा की तरफ होता है तो महाराज प्रेम बढ़ता ही है, अपना प्रेम बढ़ता ही रहेगा, तो कोई है ही नहीं, द्वेष किसी से होता ही नहीं। सब सिद्धांत एक हो जाते हैं, सिद्धांत अलग अलग मानने से अटपट होती है। तो ये प्रेम में विलक्षण ताकत है ज्ञान की अपेक्षा भी, और ज्ञान में विलक्षणता ही ये है कि बोध हो जाता है, उसमें मान्यता की जरूरत नहीं होती। प्रेम में आरंभ में मान्यता होती है, बोध में पहले ज्ञान होता है, वो ज्ञान होने बाद मानता है, और प्रेम मानने के बाद, भक्ति मानने के बाद ज्ञान होता है। परमात्मा मान लेते हैं फिर ज्ञान होता है, और ज्ञान में ज्ञान पहले होता है पीछे मान लेता है, स्वीकार करता है। इतना में भेद है, परंतु अगर फिर कोई भेद नहीं रहेगा, ये प्रेम हो जाएगा, आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद। एक मित्र मिलता है उसमें भी आनंद आता है, और सभी सब हमारे मित्र है तो फिर कितना आनंद रहेगा। सभी हमारे ही है, वास्तव सब हमारे ही है, क्योंकि परमात्मा के है तो हमारे ही हुए, हमारे परमात्मा सबके परमात्मा, हम सबके परमात्मा, सभी परमात्मा के प्रेम ही रहेगा। इस वास्ते गीता जी से धन धन वास्ते जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति सर्वभूत आत्मा सर्वभूतात्मा जी कर्मणि अकर्मी है विषय अकर्मी करी है। ये तीन ही हो गया, जो माम पश्यति भक्ति हो गई, और सर्वभूत आत्मान आदमी ज्ञान हो गया, कर्मणि अकर्मी विषय अकर्मी कर्मी है कर्मयोग हो गया, योग हस्त योग है प्रभुता, ये तीन योग है। तो तीन एक ही हो जाएंगे, तीन आरंभ में तीन नाम कहलाते हैं, अंत में शुद्ध बात शुद्ध एक हो जाएंगे। तो वासुदेव सर्व सिद्धांत है, सर्वोपरि है, तीन योग साधना है, अगर ये हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण
राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 24 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।